गुरुदेव की महाज, गुरुदेव का महाज। कौन सा गुण रहने से समझना संभव है, कौन वर्णन कर सकेगा, किसको पास इस तत्व का जो स्वरूप से अनुभव होगा। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत वस्तु गुरुदेव है, अप्राकृत वस्तु तो कोई माइक वस्तु नहीं है। माइक गुण से, माइक दिमाग से, माइक बुद्धि से, माइक ज्ञान से हम लोग उनको जान नहीं सकते, समझ नहीं पा सकते, वर्णन कर नहीं सकते। तब कैसे वर्णन हो जाए, वर्णन संभव कैसे होगा। भक्तिया भागवतं राज्यम, भक्ति से भागवत का क्या, भागवत कौन से वस्तु है, कौन चीज है, भगवान कौन सी चीज है, उनका संबंधित सब चीज का कैसा स्वरूप है जाना जाता है। संस्कृत ज्ञान से, पांडित्य से, दिमाग से नहीं जाना जाएगा। भक्तिया हम एकया राज्य, एकमात्र भक्ति से, एकया भक्तिया वैकल्पिक भक्ति से मालूम हो जाता, चाहे वो लिखा पढ़ा जाने या ना जाने, कोई विद्या उसका जागतिक आखरी विद्या उसका रहे या ना रहे, कोई चर्चा नहीं है। कितना मूर्ख आदमी, वो भी भगवान को बाकी थी जैसा रूपा को पास एक रिटायरमेंट को कम छोड़ करके आए, तो प्रभुपाद उनको होली कथा कैरो से बोल रहे थे। बीच में हर कुछ दिन वो नहीं आए, इसको थोड़ा दिन बाद फिर से आने लगे, फिर से एक रोज आए। तब उनको प्रभुपाद जी ने पूछी, आप कहां थे, इतना दिन नहीं के वहां आए। तो उनने बतलाए, प्रभु जी हम तो भागवत सुन रहे थे इसीलिए आने नहीं सके। बोले कहां आप भागवत सुन रहे थे। मैं पंडित जी से, कौन से पंडित है, मैं आपके शिष्य जो है, क्या नाम है,
गौरीदास
पंडित जी है, उनने बहुत संस्कृत उपाधि उनको था, तो उनको पास तो समझा कि इन्हें तो बहुत से संस्कृत जानता है, तो इसको पास हम यदि भागवत सुने तब हम भागवत के ठीक ठीक विचार हम जानते हैं। प्रभुपाद जी सुनकर ठीक उनको कहे, आप हुआ भागवत सुनने लगे कि गए थे, हुआ जाने से आपका तो कुछ नहीं मालूम होगा।
वो क्या भागवत जानता, वो क्या भागवत जानता,
वो क्या भागवत तो नहीं जानता। आप जाइए, ये जो बागान में काम
देता है वैष्णवदास
है, ये बागान में काम कर रहा है, महाप्रभु की जो बगिया है उनको पास से आप सुनिएगा। तो उनको उनने पसंद थे कि वैष्णवदास जो है वो तो बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते, बांग्ला भी अच्छा से नहीं जानते, प्रभा जी क्या बात बताए हमको, हमका मगज में तो घुसता नहीं, जाकर के पूछी। दूसरा वैष्णव नाडहरी ठाकुर गुरु महाराज जी ने उसके पास ऐसा पूछी, बोलिए ऐसा कहा है प्रभुपाद हम तो कहें, इसे गुरुदास पंडित जी से सुन रहे थे तो उन्होंने कहे नहीं नहीं माँ जाने से तो आपका वो सुना ठीक नहीं होगा, आप वैष्णव दास थे। तो हम समझ नहीं पाते हैं। तब गुरु जी या दूसरा वैष्णव लोग उनको बतलाए और बात जो बोले हैं तो सिर्फ बात कहेंगे। शास्त्र में ऐसे कहा है पांडित्य भगवान को नहीं पाया जाता, शास्त्र पढ़ने से ही भगवान को मिल जाएगा ऐसा नहीं होगा। तब कैसे हो सकता है भक्ति है भागवतम राज्यम, भक्ति है जिनको जानने का एकमात्र उपाय, ऐसे भक्ति जिनका है वो जान सकता है, वो चाहे टीका टिप्पणी और क्या संस्कृत पढ़ चुके और ना चुके, भक्ति का प्रभाव से सब कुछ मालूम जाता हो जाता है। भक्त हमने को आजादी सब, इसलिए हम लोग का कोई निराश होने का बात नहीं है। हम लोग तो संस्कृत नहीं जानते हैं, हम लोग तो इतना बंगला में ग्रंथ है ये सब तो पढ़ने नहीं जानते हैं, इसे हमको भगवान को प्राप्त होगा। लेकिन शास्त्र ऐसा ही बोलते हैं, भागवत भक्ति से जाना जाता है। भागवत का मतलब यही है भगवान संबंधी जो कुछ भक्ति है, श्री गुरुपाद पद्म भागवत है। दूसरा कोई चीज नहीं है, भगवान की गुण है, भगवान की शक्ति है, भगवान की महिमा का प्रकाश है। जैसे ग्रंथ है हम लोग देख पाते हैं श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंध, ऐसे ही है गुरुपाद पद्म वैष्णव लोग भगवत संबंधी लोग इन लोग को भागवत कहा जाता है, ग्रंथ भागवत भक्त भागवत। इसलिए जो भागवत हम लोग ऐसा जानते हैं, लेकिन इस दोनों को ही कैसे हम लोग जानेंगे, दोनों को जानने का एकमात्र तरीका है बिना भक्ति से उसको जाना नहीं जाएगा। गुरु जी को जाना नहीं जाएगा, श्रीमद् भागवत का शास्त्र के जाना नहीं जाएगा, कोई शास्त्र का महात्मा क्या है वो भी नहीं जाना जाएगा। इसीलिए भक्ति जो है वो कैसे हमको मिले किसी का कोशिश करना हम लोग करते हैं, लेकिन भक्ति हमको कैसे मिलेगा। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न पड़ी जाए, वो जो भक्ति है वो भगवत भक्त का संग व्यतीत नहीं प्राप्त होती है। हम भगवत भक्त कौन है कैसे मालूम करें,
तो राजा के प्रताप रूप राजा के विशेष जो बड़े लड़के थे वो युवराज थे। युवराज माने वो राज का संभालना वही करेगा, और ये राजा हैं विशेष कोई बात होगी तो देखेंगे, नहीं तो वही सब काम करते हैं। तो इनके यहाँ गया, आज जैसे तुम 2 लाख रुपया दे दो जल्दी से, हाँ तो वो तो हमको घटी हो गई। उन्होंने अपने आदमी को भेजा, तो आदमियों को भी भगा दिया। इसके बाद में फिर अच्छे अच्छे लोगों को भेजा, कोई बड़े अफसरों को भेजा, कहा जे जाओ उसके घोड़े हैं सब कुल कर कर ले आओ, बैठो चुपचाप,
बहुत लाल सिटी
मारा, आज छोड़ सब उठा लो, उससे जो कुछ हो सब हो जाए। तो गए तो लेने नहीं दिया घोड़ों, तो फिर वो राजा के पास मिले जुआरा, तो जी गोपीनाथ पट्टनायक इतना रुपया हड़प लिया है, देता नहीं है, और आदमी जाता है तो उसको भगा देता है, तो जो इच्छा हो तुम कर दो, तो पूछने की जरूरत है, तुम्हारे ऊपर में छोड़ दिया उसको। तो उन्होंने निर्णय किया जिससे इसको फांसी दे दिया जाए, चंग पर चढ़ा दिया जाए। चंग माने ऊंचे चबूतरे से तलवार सब रखी जाती है ऐसे, तो तलवार धार और ऊपर से फेंक दिया जाए, तो वो गिर करके मरेगा। उन्होंने कहा जैसे अच्छा तो यदि वो नहीं देता है 2 दिन का समय दिया जाए, 4 दिन का, और नहीं तो उसको चंग पर लेकर के चढ़ा करके फेंक दे मर जाए। जब ऑर्डर हो गया तब हड़कंप मची, तो सब लोग महाप्रभु जी के पास में गए, गांव वाले, ये आपका सेवक है और राजा की भी बहुत सेवा करता है, राय रामानंद जी का बड़ा भाई है, इसलिए आप कुछ हस्तक्षेप करके राजा से कहलवा दीजिए कि इसको छोड़। धीरे धीरे वो कहता है कि हम अपने घोड़ों को बेच करके रुपया दे देंगे और जो बाकी रह जाएगा उसको धीरे धीरे दे देंगे। महाप्रभु जी बोले जैसे मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा, मैं भजन करने के लिए आया और मैं विषय लोगों के विषय में नहीं जाऊँगा। तो फिर वो लौट आए, अब उनके परिवार के सब लोगों को राज कर्मचारी बांध करके पट्टनायक जी के साथ में ले गए और ले करके कहा जैसे अब उनको चंग पर हम चढ़ाए। अब फिर दौड़ करके तो उन लोगों ने और भक्तों को पकड़ा, और भक्त लोग तो दामोदर इत्यादि जितने और ग्रामीण लोग थे सभी लोग महाप्रभु जी कहे, महाप्रभु जी आप एक बात कर दीजिए राजा के लिए, उसके लिए हुक्म हो जाएगा और जरूर छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि बार बार हमसे तुम लोग कहते हैं भजन करने आए न विषय का ये सब करने आया, वो अच्छा हुआ राजा का रुपया क्यों खाया, यदि खाया तो उसको भरना चाहिए और नहीं तो वो दंड देगा, हम इसमें हस्तक्षेप कौन करें, रामानंद का भाई हो चाहे जो कोई हो, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं, जो कर रहा ठीक कर रहा है, अब तो त्राही त्राही मत ये कहेंगे नहीं। तो जब ये भक्त लोग जब गए तो उन्होंने कहा जैसे अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अलाल नाम करूँगा, किसी से भी कई लोगों का बात हमारे अंदर में कान में पहुँचे, हमारा भजन एकदम सपना से, मैं उसकी चिंता करूँ नहीं इसकी चिंता करूँ। कहा गोविंद जी से गोविंद सब अल्लाह ना की और वहीं पर निर्जन स्थान है और वहीं पर रह करके हम भजन करें, इन लोगों की बात हमारे कान में आने से हमारा भजन सपना से हो। तो वो चलने के लिए तारे हम तैयार हो गए, इतने में राजगुरु काशीनाथ काशीनाथ पहुंचे महाराज महाप्रभु, आप दूसरे लोगों की बात में आएंगे कि आप यहाँ छोड़ कर से मत जाइए, उनको हम लोग अब से व्यवस्था करेंगे, कोई आपके पास नहीं जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर भजन कीजिए, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, दूसरे लोगों को आपके पास नहीं आएंगे। किंतु महाप्रभु जी ने पूछा जी अच्छा तो उसको पकड़ करके ले गए तो क्या हुआ आगे, कहते हैं जैसे विषय लोगों की बात सुन करके थी वो हृदय में पहुंच जाती है, उसका समाधान जब तक नहीं हो जाए तब तक उनको भी बेचैनी, क्योंकि राय रामानंद के बड़े भैया हैं और भवानंद के ये पुत्र हैं, उनसे संबंध कुछ हो गया है, इसलिए उनसे पूछने लगे जैसे अच्छा उसका क्या हुआ, कहीं जैसा आप फिर पूछे आप क्यों पूछते हैं, आप उनकी बात में मत जाइए मत पूछिए, अरे बतलाओ तो सही ये क्या हुआ। तो वो पकड़ करके ले गया है और साथ ही साथ में अब चंद पर अब चढ़ा रहा होगा। महाप्रभु जी ने कहा कि अच्छा एक बात राजा के पास जाने की जरूरत, जगन्नाथ जी के पास में गए और सब उनसे प्रार्थना करो जो उनको राजा छोड़, वो जगत के नाथ हैं, वही सब विधान करते हैं, इसलिए राजा के पास क्या जाएगा, उनके पास में जाओ जगन्नाथ जी के पास, तो उनके कहने से वो लोग जगन्नाथ मंदिर में गए। इतने में कोई और आया, तो और आया तो मैंने महाप्रभु जी के मैंने खास परिसर में मैंने पूछा जी उसका क्या हुआ, क्या हुआ? वो राजा तो चंग पर चढ़ाने के लिए एकदम प्रस्तुत है, अब चढ़ाई दिया होगा या चढ़ रहा होगा। अच्छा देखो प्रभु से प्रार्थना करो यदि वो छोड़ दे सबके लिए, ऐसा ना करो नहीं तो राजा का रुपया खाएगा और राजा छोड़ देगा। थोड़ी देर के बाद में एक आदमी आया और महाराजा के पास में गया, हमने महाप्रभु जी के पास में गया था, उन्होंने कहा जी जगन्नाथ जी के पास में जाओ, आपके लिए कोई संदेश नहीं था। उन्होंने कहा जी जगन्नाथ जी के पास में जाओ, तो ठीक है, तो जगन्नाथ जी का ही आदेश, अपने लड़के को हुक्म दिया जी भाई इसका घोड़ा जा करके नीलाम कर लो और उसे जो कुछ रुपया आता है और जो बाकी बच जाएगा वो क्रमशः दे देगा, इस शर्त पर उसको छोड़ दो। और उसके 10-12 जो घोड़े थे उसी दाम पर उसका लेकर के चले आए और उसका मुजरा कर दिया और पीछे ले जाओ, खबरदार ऐसा मत करना, और पूरा रुपया उसका पीछे से। फिर जा करके वो महाप्रभु जी को बतलाया, मैंने कहा कि प्रभु जी ने उसकी रक्षा की, कह देना है कि भविष्य में ऐसा ना करे और हमको चिंता में मत डाले। तब सब लोगों ने विचार किया कि ये महाप्रभु की कृपा से ही ये नहीं तो इसको आज प्राण बताओ। ऐसे ही विषय लोगों के साथ में रहने से विषय लोगों पर जरूर विपत्ति आएगी, और यदि वो साधु के पास में जाता है तो हम लोगों का भी मन इसी लिए खराब होता है। इसलिए महाप्रभु जी कभी भी विषयी लोगों का संग नहीं करते थे। जैसे वो जरूर पूछता है कि
विषयी अन्न खाई ले मोलिन है मन,
पुकार काने ना पोसी के देह रोग,
संसार पुकार काने ना पोसी दे देह रोग दूरे जावे,
जो त्यागी हैं वो ऐसा भजन करें विषयी लोगों का आनंद नहीं खाए, नहीं तो उनके प्रति कुछ स्नेह और ममता हो जाएगी और फिर उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी रहेंगे। इसलिए विषय लोगों की पुकार कान में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो भजन सब बर्बाद हो जाए, रूखा सूखा बिना बिना भोजन का रह जाए वो बल्कि ठीक है, किंतु यदि विषय लोगों का खाएगा तो उनका सुख दुख का प्रभाव जरूर पड़ेगा।
इस गांव का नाम क्या है?
एक
इस गांव का नाम
बेंटोपुर,
बेंटोपुर
बेंटू ना बेंटो
बेंटो बेंटोपुर
और बैकुंठ अथवा बैंकेटपुर,
यू न्यू व्हाट आई टोल्ड? माधवी देवी की ना रामानंद बोन ना की भवानंद
भ्रातुष्पुत्र वो सिखी नहीं थी
ना माधवी देवी,
उनकी बहन थी, तब क्या हुआ
रामानंद प्रभु की
सिखी मैती की बहन थी ना, सिखी मैती की बहन है माधवी देवी, अच्छा। भाई बहन है वो, और ये माधवेंद्र सिंह के भवानंद जी के भ्रातुष्पुत्र हैं सिखी मैती, वो भ्रातुष्पुत्री हुई।
हाँ ही वाज बी सही, राय रामानंद वाज नॉट बी सही बट ही वाज बी सही, बट बाय द रिलेशन ऑफ राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु यूज टू लव एवरी वन ऑफ हिज होल फैमिली।
पहला आए अनवसर में प्रति वर्ष आते हैं, उसमें में कहाँ कृष्ण मिलेंगे अनुसंधान करने के लिए, वहाँ पर जब दर्शन नहीं होता है। और ये बानीनाथ का ये जबकि वो हुआ तब ये अभी जो घटना कही उसके उपलब्ध में सुना जाता है जो आलाना और आए, जबकि जा रहे थे दक्षिण में, तो दक्षिण में जाते समय में नित्यानंद प्रभु इत्यादि सब भक्तों के साथ यहाँ आए और सबको यहाँ छोड़ करके अकेले यहाँ से दक्षिण में
समुद्र तीरे
समुद्र के आलाना सीधे यहाँ पर आए पैदल,
और जब वहां से लौट करके जब आ रहे थे तो यहीं पर रुक गए, दक्षिण से लौटते समय यहाँ पर रुक गए, और काला कृष्ण दास को जो कि भट्टाचार्य उसको यहाँ से भेजा, जाओ नित्यानंद प्रभु को, भ्रमताचार्य को, राय रामानंद सबको खबर दो, तो ये सब लोग यहाँ पर आए। चार बार पांच बार
चार छोटे हरदास के,
आज छोटे हरदास के उनको वर्जन करते समय में सब लोग उनसे प्रार्थना करने लगे, ये प्रभु आप उसको क्षमा कर दो, कभी हम क्षमा मा नहीं करते हैं, तब हम आला लात में जाएंगे सब। ये पांच बार का उल्लेख मिलता है और प्रति वर्ष में
कौन अवसर चल
तरफ में कमल के फूल खिल रहते, सुंदर सुंदर झाड़ियां वृंदावन जैसी बनी रहती थी, और निर्जन प्रदेश, खूब सुंदर वायु और जल, और समुद्र को देखने से ही जमुना का अभिमान, इन सब का
वृंदावन की उद्दीपना के लिए वहां पर आलन लगाते थे,
वहां पर द्वारका अभिमान और यहाँ पर ब्रज का अभिमान है।
अमरनाथ बोले दक्षिण देश के मद्रास से पूरी के 12 जन दिव्यस्तुरी माने भगवत पाठ कर सारा जमुनाचार्य रूपे थे, गोदा देवी रूपे थे, तापरे अन्य अन्य नाम दिए, सारा जगत से प्रकाशित हुए भगवत भक्ति रामानुजाचार्य मृत्यु हो गए, आज के प्राय 2000-3000 वर्ष पूर्व सारा किसी किसी गोपीय भाव तहदर मध्य छोड़े गोदा देवी, गोदा देवी तैमिन छे तहत तुलसी कानूने से जन्म हो, तुलसी कानून छो असुंदर सुंदर रेडियो चमेली दूरी ये सब बागान छो, জল সব দিয়েছে আর রঙ্গনাথের জন্য ওইখান থেকে পুষ্প মালা এই সব নিয়ে গিয়ে মন্দিরে তো রোজ দিয়ে তার বাগানে দেখলেন তুলসী কাননে একটা খুব ছোট মানে আজকেই জন্মগ্রহণ করা একসঙ্গে যখন সেটি 8-10 বছরের হলো
কে বললেন তুমি বলেন
ওই যে আলবার ওনার নাম ছিল ওই যে গর্ত হয় না গাছের মধ্যে ওর মধ্যেই থাকছে পূর্বে ওই নামানুসার তার কিছু নাম ছিল মনে হচ্ছে না, তিনি তাকে পালন করতেন আর ঠাকুরের সেবা করতেন, যখন মেয়েটি 12 বছরের হলো তখন ওই বাবাকে মালা দা চোরাতে গেছে আছে বাবা আমি মালা গাছ সুন্দর সুন্দর হার বুঝত তার মধ্যে তুলসী দিত সুন্দর হার বলে, তারপরে দর্পণের সামনে দাঁড়াত আর ওই মালাটা নিজে কলা দিত, দেখত যে খুব সর্বাঙ্গ সুন্দর মালা হয়েছে, তখন সেই মালাটা নিয়ে বাপকে দিত, বাপ নিয়ে রঘুনাথের মন্দিরে দিয়ে দিত, তারপরে ঠাকুর পড়ে একদিন মালার সঙ্গে সঙ্গে চুলটা দেখা দিয়েছে লম্বা, তখন পূজারি বলে দিতে এর মধ্যে চুল কোথা থেকে আসলো নিশ্চিত কেউ করেছে বাকি এটা, তখন ইনাকে ডাকো ওর বাবা বলে দিতে তুমি এই মালাটা নিজে করেছ
All right. चला गया मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राधिकायै सदादये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो हमरा सोखन कानेर माध्यमे ते भगवत दर्शनेर कथा हमरा श्रवण करला सत्य सत्य शोकनीय ये जो वर्तमान हमारा देखो अभी जो हम लोगों की आंखें हैं भगवान को नहीं देखते किंतु वैष्णवों के मुखारविंद से जो कान के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे उसके द्वारा जो दर्शन होता है वो शुष्क होता है यही हमारी परंपरा की नीति है। तो पूज्यपाद महाराज जी ने कृपा करके हम लोगों को तत्व के माध्यम से श्रवण के माध्यम से कैसे हम लोग दर्शन कर सकते हैं इसके संबंध में इन्होंने बतलाया। मैं तत्व इतना नहीं जानता, मुझे तत्व का इतना ज्ञान नहीं, मैं ऐतिहासिक दृष्टि से मैं कुछ आप लोगों के सामने जो मैं जानता हूँ निवेदन करूँ। यहाँ के पंडो जी से सुना है, ग्रंथों में जो देखा है, गुरु महाराज जी से जो मैंने सुना है उसको मैं बतलाने की चेष्टा करूँ। हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, हताश होवार कोनो कथा नहीं। हमरा जे काजे जो नहीं खाने से थी वो काज हमारे सिद्ध हुए थे, हमारे जीवन सफल हुए थे, क्यों हमारा दर्शन करवार जो नहीं खाने आती नहीं, हमारा किसी जो नहीं ऐसे थी ना जो वैष्णव देव पीछे पीछे हमारा जाबो कुछ कथा श्रवण कर दो। আর সর্বোপরি চৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানে এসেছিলেন কিভাবে একটি পাথরে স্পর্শ করেছেন পাঁচশটা পৃথিবী এখানে তিনি ভাব শুনেছি যে আমরা চৈতন্য চৈতাম্রতে দেখেছি যে মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে এখানে এসে ভাবে তিনি ধরুন যেতেন কৃষ্ণ অনুসন্ধান করতেন কৃষ্ণ খোঁজ করতেছে। हम तो यही केवल आए इस आशा से शास्त्रों में लिखा जहाँ पर प्रभु जी की लीला हुई कृष्ण की लीला हुई वहाँ पर जाने से उस स्थान का स्पर्श करने से धूलि ले लेने से सिर पर और उनकी उन कथाओं को सुनने से वही कृष्ण प्रेम हृदय में आता है। नारद जी ने कृष्ण से ऐसा ही वरदान मांगा था बृहद भगवतामृत में हम लोग देखते हैं बृहद भगवतामृत यही रूप लिखा है। नारद बोल रहे जहरा जहरा तुम्हारे यही समस्त लीलार फलित जाबे आर सेहकान कार धूलि कणा स्पर्श करबे माथाय दिबे आर तहार वही सब लीलार कथा श्रवण करबे निश्चित रूपे से तहां दे कृष्ण प्रेम होबे कोनो संदेह नहीं यदि तहार अपराध ना हो। बस यही एक मात्र शर्त वैष्णव के चरणे थे भगवान के चरणे थे नामे से अपराध यदि ना हो तले अव्यर्थ कृष्ण प्रेम जन्माई से पारे
पांचेर अल्प संग
एक जन हमारा दर्शन करते आती नहीं हमारे अत स्पर्धा नहीं और अत अभिमान नहीं जादे रे रकम अभिमान थाके तहादे थाकते पारे। আমরা তো বৈষ্ণবদের পিছিয়ে পিছিয়ে এসেছিলাম আর আমাদের এই আশাটা মিটেছে দু চারটি হরি কথা শুনলাম আর ওই মহাপ্রভু যেখানে তে গড়াগড়ি দিয়েছেন এই স্থানে থেকে মা ভাবেতে বিভোর হয়েছিলেন ওই স্থানটাকে তো এসব দ্বারা আর স্থান তো কোথাও উড়ে যায় নাই কি স্থানটাও নাই ভগবান অন্তর ধ্যান হবলে তার ধামটা থাকে কি না আর কি ধামও চলে যায় ধামটা থাকে এই লালসাতে আমরা এসেছিলাম আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে কোনো না কোনো দিন একদিন হবে কৃষ্ণ প্রেম আমাদের সকলেরই এটা হবে কারণ ধামের একটা তো গুণ আছে আমার ভজন প্রভাব নাই থাকুক কোন কথা আমি জানি আমার ভজনে কোনো প্রভাব নেই কিন্তু ধামের প্রভাব কোথায় আগুনের আগুনত্ব যে দাহাতটা তার কোথায় চলে যাবে উড়ে আপনার জেনে থাকবেন অথবা না জেনে আগুনটা তো পুড়াবে তো মহাপ্রভুর ধূলিকণা এখানে যখন আছে আমাদেরকে কোনো ওই ফল কুচি দিবে না, ব্যর্থ হবো আমরা, আমরা কুচিতেই ব্যর্থ হবো না। আমাদের যে উদ্দেশ্যতে এখানে এসেছি, আমাদের সকলের উদ্দেশ্য নিশ্চিত রূপে সাধিত হয়েছে, আমরা এইখানে এসেছি, এইখানে তো আমরাও গড়া গড়িয়ে দিব। যদিও আমাদের শরীর জ্বর, কিন্তু তার সঙ্গে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে কিনা, তার ভিতরে তো আছে। অতএব ব্যর্থ আমরা হই নাই। আমরা যখন এইরকম ভক্তগণের সঙ্গে এসেছি, তার নিশ্চিত আমাদের সফল মনে রেখেছি। আপনারা দেখুন এইখানে মহাপ্রভু, এই পাথরটা এখানে ছিল না, অন্যত্র ছিল। মহাপ্রভু এখানে এসেছিলেন, এসে দেখলেন যে দরজা বন্ধ আছে। আমি যে কাজের জন্য জগন্নাথ দেবকে ছেড়ে দিয়ে এখানে আসলাম, এখানে দর্শন হলো না, হায় হায়। যেরকম হতে কৃষ্ণ বৃন্দাবনেতে অন্তর্ধ্যান হয়ে গেলেন, গোপীরা মহা উৎকণ্ঠিত হয়ে ক্রন্দন করতে রোদন করতে 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 কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করছে, তারা পয়সা গ্রামেতে গেল। এটা হচ্ছে প্রভুপাদের বিচার, আমাদের ধারাতে বিচার। পয়সা গ্রামেতে গেলেন, পয়সা গ্রামে ও গে, কহা কৃষ্ণ কোথায়, কৃষ্ণ কোথায়। সরুলতা বৃক্ষ যে সামনে আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার শ্যামকে দেখেছ, আমার শ্যামকে দেখেছ, আমার কৃষ্ণকে দেখেছ, আমাদের চিত্ত তার চুরি করে নিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। আমাদের চিত্ত যতদিন না ফিরায় ততদিন তাহাকে আমরা সব দেখছি, কোথায় গেল আমাদের প্রাণ। দেখা গেছে চতুর্ভুজ মূর্তি, এখানে তো দেখছেন চতুর্ভুজ মূর্তি, মহাপ্রভু চতুর্ভুজ মূর্তি দেখে না, ও দেখে যে ওই আমাদেরকে বঞ্চনা করবার জন্য এই চারটি মুখ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীমতী রাধিকা অন্বেষণ করতে যায়, প্রথমে গেল গোপীর অন্য লোক, চতুর্ভুজ মূর্তি দেখে আনে কৃষ্ণ বঞ্চনা করবার জন্য চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করছে, দেখি যে কি করে। গোপীরা ওখানে গেল, তাকে প্রণাম করে দিয়ে চলে গেল, কিছু জিজ্ঞাসাই করে না, তাদের সঙ্গে কোনো প্রয়োজন নাই। যার হাতেতে বাঁশি নাই, যার মস্তকেতে মোর মুকুট নাই, যার কোন ওই কম্বলি আর হাতেতে বো চারণের লাঠি নাই, বনমালা নাই, ব্রজের বেশ নাই, গোপ বেশ নাই, শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গে তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই। দেখলো যে এটা কিছুই নাই এর মধ্যে। শ্রীমতী রাধিকা ওরা সব চলে গেল প্রণাম করে, যে প্রয়োজন নাই। শ্রীমতী রাধিকা আসছে, দেখে এই যে চতুর্ভুজ মূর্তি যে ধারণ করেছিলেন কৃষ্ণ, ওই ঐশ্বর্য শক্তি তাকে দেখেই অন্তর্ধ্যান চলে গেল, আর তিনি ভাবেছে আবিষ্ট হয়ে গেলেন, রাধিকা ভাবেছে। আর ওই ঐশ্বর্যের কোন জ্ঞান থাকে না, ভগবত্তা কোথায় যে চলে গেলে উড়ে, এই হচ্ছে ব্রজবাসীদের ভাব। কৃষ্ণ ভগবান কার কাছে, যারা নারায়ণ ভক্ত, ঐশ্বর্য পর ভক্ত, দ্বারকাধীশ তিনি নারায়ণ, তাহাকে দ্বারকাবাসীরা দেখবে, কিন্তু ব্রজবাসীরা তাহাকে কোনোদিনই চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে দেখতে চায় না। এই জন্য তাহাদের ভাব দেখেই দুটি হাত ভিতরে এসে চলে গেল, আর দুটি মাত্র হাত থাকলো, বংশী হাতে এসে গেল, মোর মুকুট এসে গেল, লক্ষিয়া কম্বলি এসে গেল, আনন্দ নন্দত্ব যশোদা নন্দত্ব ওখানে গেল। রাধাকে দেখে তার ভাব কোথায় যুক্ত হয়ে ওই ভাবেতে, ওই ভাবটা নিয়ে এইখানে আলালনাথেতে মহাপ্রভু এসেছেন, রাধিকার ভাব কান্তি নিয়ে। আর ওইখানে দেখলেন যে ঐশ্বর্য, আর তিনি দর্শন দিচ্ছে না, তখন বৃন্দাবন অভেদেতে এইখানেতে তিনি আসলেন, আর এসে প্রেমেতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। চতুর্ভুজ দেখেছেন তিনি প্রথম অবস্থাতে, তারপরে মহাপ্রভু পরিকরগণ, আর মহাপ্রভু যখন আসলেন তখন দেখেন যে সাধা দুটি হাত নাই, হাতেতে বাঁশি, এখানে মোর মুকুট, আর সত্যি দেখে ব্রজের ভাব দেখে মহাপ্রভু একাবেশে আত্মনির্ভর হয়ে যখন পাথরেতে গড়াগড়ি দিলেন, তখন ওই মস্তকের চিহ্ন, এখানকার চিহ্ন, পায়ের দুটোর চিহ্ন, আর এইখানকার চিহ্ন, আর কোমরের ওই দুটি পাঁচটি পায়ের আঙুলির এইসবগুলি চিহ্ন ওইখানে তো পড়ে আছে। পূর্বে কেউ জানতো না, অনেকদিন এই সবগুলি এইরকম ভাবে অলুপ্ত ভাবে এই পাথরটা পড়েছিল। পরবর্তীকালে কোন ভক্ত দেখে দেখুন যে একটা মহানিধি মহাসম্পদ, এই জন্য পরবর্তীকালে সে নিয়েছে এইখানে তাহাকে স্থাপন করা হল যে ভক্তরা দেখুক। রামচন্দ্র বহু কালেতে পূর্বে যখন লীলা প্রকাশন ভরত যখন রামচন্দ্র যখন রাজ্য থেকে ফিরে আর ওই নন্দী গ্রামে তার সঙ্গে দেখা হয়, ভরত সঙ্গে মিলাপ হতে লাগছিল, তাদের প্রেমেতে ওই পাথরটা পিঘলে গিয়েছে, ওইখানে ভরত মিলন ওই চিত্রকূটেতে নন্দী গ্রামে চিত্রকূটে, আর দেখতে পাওয়া যায় একবার পাথরটা টলমল হয়ে গেছে আচরণ চিহ্ন, আর এখানে সমস্ত পাথরটা পিঘলে গিয়েছে, আর মহাপ্রভু সর্বাঙ্গ ওইখানে তাহার হয়েছে। কৃষ্ণ বাঁশুরি বাজাইছেন, ছোট চরণ পাহাড়ি বড় চরণ পাহাড়ি বৃন্দাবনে সে আছে, তাহার নিশান আছে, তার দুইটি চরণ পাওয়া যায় ডাইনার বাম চরণের, সে কি আগ্রহ করবে। নন্দগ্রামেতে অক্রু তাহাকে চরণ চিহ্ন দেখেছিলেন, ওখানেও কৃষ্ণ বাঁশি বাজাওয়াতে পাথর পিঘলে গিয়েছে প্রেমেতে, কিন্তু এইরকম ভাবে হয় না, এরকম ভাবে দেখা যাচ্ছে, কারণ রাধা ভার সম্পূর্ণ নিয়ে তেনে প্রেমেতে ডগমগ হয়ে আর এইরকম ভাবে তিনি গড়াগড়ি এখানে দিয়ে দিয়েছেন। এই পরস্পর ইত্যাদি যদি কেউ স্পর্শ করে, যদি এই সবগুলি ভাব যদি শ্রমণ করে, যে জন্য এরা এনেছেন দর্শন করাইবার জন্য আমরা কেউ জানি নাই, আর এরা আসেন নাই, তিনি আসেন নাই, কেবলমাত্র এই সবগুলি শ্রমণ করে হৃদয়তে এইরকম ভাবে ভাব আসুন, আমাদের জীবন সার্থক হোক, এই জন্য এই জন্য আমাদের এখানে আসা আর এইগুলিকে দেখে আমরা যে জন্মেতে আমরা কৃষ্ণ প্রেম পাবো বহু দূরের কথা, আমরা এইটা লাভ হয়েছে। এখানকার ঐতিহাসিক কথা আছে, এই স্থানের নাম হচ্ছে আলালনাথ, মূলেতে এটি হচ্ছে ব্রহ্মগিরি পর্বত, এখন যেরকম গিরিরাজ গোবর্ধন ক্রমে 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 অন্তর্ধান হয়ে যে মাটির ভিতরেতে চলে যাচ্ছেন, ওই রকমের বহু পাহাড় ইত্যাদি সবগুলি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যেখানে সমুদ্র ছিল না সেখানে সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে, আর যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে স্থল হয়ে যাচ্ছে, তো ব্রহ্মগিরি পর্বত ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হতে লাগলো। ব্রহ্মগিরি পর্বত মানে এখানে ব্রহ্মা তপস্যার স্থান, এইখানে ভগবানকে তিনি দর্শন করেছিলেন, এই জন্য তাহার পর্বতের নাম হল ব্রহ্মগিরি। পরবর্তীকালে সে রামানু সম্প্রদায়ের দ্বাদশ জন অলবার হল, বারহ ব্রহ্মাজি নে তপস্যা কিয়া, ভগবান কা ইয়া পর দর্শন কিয়া, সমুদ্র ভি ইয়া পর নিকট হে। কুছ দিনোঁ কে বাদ মে हमारे चार संप्रदाय के अंदर में रामानुज का एक संप्रदाय सिख संप्रदाय है, उसमें 12 सिद्ध महापुरुष हुए, भगवान के नारायण के परिकर लोग जन्म लिए रामानुज से बहुत पहले। रामानुज लास्ट अलवर हैं, अंतिम अलवर, और उनके गुरु जी लास्ट बटवन के जमुनाचार्य, और जमुनाचार्य से पहले गोदा देवी, गोदा देवी से पहले सखकोप सूरी, उनसे पहले भी और सब हो गए हैं 12 सिद्ध महापुरुष लोग, वो आकर के हैं
नाथ मुनि जामुन
मुनि, नाथ मुनि जामुन मुनि तो हो गए।